दिन भर आज है 25 जुलाई दिन गुरुवार। मैं हूं अपूर्व कृष्ण। कर्नाटक में सरकार बनाने के करीब पहुंचकर भी बीजेपी अब तक नहीं बना पाई है सरकार।
अभी भी कई एमएलए जो है उनका इस्तीफा का मामला फाइनल नहीं हुआ है। इस्तीफा दे दिया है मगर वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है।
बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार के मामलों में सुप्रीम कोर्ट का देश भर में विशेष अदालत बनाने का आदेश। भारत से काफी नजदीक का रिश्ता है ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का।
उसको हिंदुस्तानी खाना बहुत पसंद है तो सबके साथ बहुत आराम से बात कर रहा था और मुझे पता लग गया कि ये हिंदुस्तान को काफी अच्छी तरह जानता है।
होंगी आपकी चिट्ठियां भी, पर पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। लोकसभा में आज 3 तलाक को आपराधिक मामला बनाने वाले बिल को पास कर दिया गया। प्रस्तावित कानून के तहत 3 तलाक देने वाले व्यक्ति को अधिकतम 3 साल जेल की सजा का प्रावधान है। सदन में इस पर तीखी बहस के बीच केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसे इंसाफ और इंसानियत का मामला बताया। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि ये बिल मुस्लिम विरोधी और राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। विपक्षी सदस्यों ने इस कानून के दुरुपयोग की आशंका जाहिर की है, लेकिन मोदी सरकार की ओर से इसे लैंगिक समानता लाने वाला बताया गया है। अफगानिस्तान में आज कई जगह हुए धमाकों में 40 से अधिक लोग मारे गए हैं। राजधानी काबुल में एक के बाद एक 3 धमाकों में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई। इनमें एक आत्मघाती हमलावर था जिसने सरकारी कर्मचारियों को ले जा रही बस को निशाना बनाया। काबुल के उत्तर में ताखार प्रांत में 2 चौकियों पर हमला करके तालिबान ने 20 से अधिक पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी, जबकि नानगढ़ प्रांत में विवाह समारोह में जा रहे एक परिवार के 9 लोग सड़क किनारे हुए बम धमाके में मारे गए। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता नुसरत रहीमी ने कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि युद्ध का विस्तार हुआ है और अफगान जनता के दुश्मन काबुल और अन्य प्रांतों में नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। ये दोहा में बनी सहमति के खिलाफ है। तालिबान ने नागरिकों और नागरिक इलाके को निशाना न बनाने पर सहमति जताई थी, जबकि वो अभी भी नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। ये थे नुसरत रहीमी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संसद को संबोधित करते हुए ब्रेग्जिट के बाद की एक महत्वाकांक्षी तस्वीर पेश की है। उन्होंने कहा कि 2050 तक ये देश दुनिया की सबसे बेहतरीन जगहों में शुमार हो सकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यूरोप में ब्रिटेन सबसे संपन्न अर्थव्यवस्था वाला देश होगा। उन्होंने समझौता या बिना समझौते के अक्टूबर तक यूरोपीय संघ से निकलने के अपने वादे को दोहराया। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि बिना समझौते वाले ब्रेग्जिट का विरोध करने वाले अधिकांश सांसदों से वो कैसे निपटेंगे। मुख्य विपक्षी लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने कहा है कि जॉनसन ने हड़बड़ी में दक्षिणपंथी रुझान का कैबिनेट गठित तो कर दिया है, लेकिन उनके पास ब्रेग्जिट की कोई योजना नहीं है। बोरिस जॉनसन ने कहा कि उनका पहला काम है लोकतंत्र में भरोसे की बहाली। पहला काम लोकतंत्र में भरोसा कायम करना है। यूरोपीय संघ से 31 अक्टूबर तक बाहर आने का लोगों से बार बार किए गए वादे को पूरा करना है। मैं और सारे मंत्री इस तारीख तक यूरोपीय संघ से बाहर जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, चाहे जो हालत हो, वरना हमारे राजनीतिक तंत्र से भरोसा उठ जाएगा। ये थे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के शब्द। इजरायली सेना ने अपने शार्प शूटरों को आदेश दिया है कि वो गजा की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे फलिस्तीनियों के पैर में गोली मारे। ये आदेश मौतों की संख्या रोकने के लिए दिए गए हैं। एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने कहा है कि घुटने से ऊपर गोली मारने की नीति के कारण कई लोगों की मौत हो गई है। गजा में स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि 1 साल पहले जब से सीमा पर साप्ताहिक प्रदर्शन शुरू हुए हैं 300 फलिस्तीनी मारे गए हैं, जबकि 20,000 लोग घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारी अपने घर जाने देने की मांग कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया ने एक नए तरह के छोटी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। बीबीसी समाचार।
आज है 25 जुलाई गुरुवार। दिन भर में सुनने वालों को अपूर्व कृष्ण का नमस्कार। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ बीबीसी हिंदी की वेबसाइट और ऐप पर भी लाइव सुन सकते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस सरकार गिरने के बाद बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व सरकार बनाने के लिए तो तैयार हो गया है, मगर वह सरकार कैसे बनेगी इस पर पेंच फंसा हुआ है। और ये सुलझेगा कैसे, वो निर्भर करता है कई बातों पर, जिनमें सबसे अहम है कि स्पीकर बागी विधायकों के बारे में क्या फैसला करते हैं, वे उनका इस्तीफा मंजूर करते हैं या उन्हें अयोग्य घोषित करते हैं। पूरे ब्यौरे के साथ बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
आज हर किसी की निगाहें बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह पर रही, क्योंकि पार्टी का रुख कर्नाटका में सरकार बनाने पर कुछ सीधा साधा नहीं हो पा रहा है। पहले तो अभी तक स्पीकर रमेश कुमार ने भागी विधायकों के इस्तीफों पर या उनको अयोग्य ठहराने पर कोई निर्णय नहीं लिया है। बीजेपी की केंद्र नेतृत्व ये नहीं चाहता है कि सरकार बनाने के बाद उसका कोई उपहास नहीं करें। आज कर्नाटका बीजेपी के एक गुट ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की और एक और बार बैठक करने की संभावना भी थी। इस मामले में राज्य बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर वामन आचार्य ने बीबीसी को बताया,
कल और आज दोनों दिन हम सब साथ में बैठ के, हमारे भी दो रिप्रेजेंटेटिव दिल्ली में गए हैं, सबके साथ बैठ के ये सोच हुआ है कि प्रोज एंड कॉन्स पहला सोचेंगे, क्योंकि अभी भी कई एमएलए जो है उनका इस्तीफा का मामला फाइनल नहीं हुआ है। वो इस्तीफा दे दिया है मगर वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है। इस बैकग्राउंड में एक तो पक्का है कि हम सरकार बनाएंगे कर्नाटक में, एक दिन दो दिन और भी लगेगा, सब क्लियर करके ही हम सरकार बनाएंगे।
मतलब ये कि बीजेपी अभी चुनाव के बारे में नहीं सोच रही है, क्योंकि उनके विधायक और बागी कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर के विधायक भी चुनाव नहीं चाहते हैं। लेकिन हर राजनीतिक निर्णय इस बात पर निर्भर हो रही है कि स्पीकर रमेश कुमार किस तरह का निर्णय लेने वाले हैं। स्पीकर रमेश कुमार की विधानसभा में उच्चारणों में के अनुसार वो कुछ अहम निर्णय लेने वाले हैं जो उनके पक्ष के नेताओं को भी पता नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता ब्रिजेश कालापा ने कहा,
नो आई थिंक द स्पीकर्स रोल एज अ फंक्शनरी
संविधान के मुताबिक स्पीकर की भूमिका सुप्रीम कोर्ट ने भी मान ली है कि वो किसी भी तरह का निर्णय ले सकते हैं। अभी तो उनके निर्णय का इंतजार ही करना चाहिए और देखना चाहिए कि वो किस तरह का निर्णय लेंगे। ये थे ब्रिजेश कालापा के शब्द। दूसरी ओर कांग्रेस के नेता भी बड़ी दिलचस्पी से देख रहे हैं कि बीजेपी किस तरह भागी विधायकों के आकांक्षाओं को संभालेगी। कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने कहा,
येडियूरप्प स्वेर आगबेकरे 15 जन 17 जन अष्टे।
देखिए, अगर बीजेपी नेता येडियूरप्प ये 15 विधायकों के साथ शपथ ग्रहण नहीं लिए तो वो उनके कपड़े फाड़ देंगे, क्योंकि हर किसी के ऐसे मांगे हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। हमें पता है कि वो किस तरह की उम्मीदें रखकर गए हैं। ये थे डी के शिव कुमार के शब्द। बहरहाल इस मामले में हर किसी की आंखें स्पीकर रमेश कुमार पर ही रहेंगी, क्योंकि उन्होंने विधानसभा में स्पष्ट कर दिया था कि वो अगले 2 या 3 दिन में बागी विधायकों के मामले में निर्णय ले लेंगे। जानकारों का मानना है कि ये भी हो सकता है कि स्पीकर रमेश कुमार जल्द से जल्द निर्णय लेने के बाद खुद इस्तीफा भी दे सकते हैं, क्योंकि वो बीजेपी सरकार के साथ काम करना नहीं चाहेंगे। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
कर्नाटक की गुत्थी सुलझकर भी अभी तक उलझी हुई ही लग रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई में बच्चों के साथ होने वाले यौन दुर्व्यवहार के मामलों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार से ऐसे सभी जिलों में विशेष अदालतों का गठन करने का आदेश दिया जहां पॉक्सो एक्ट के तहत 100 से ज्यादा मामले लंबित हैं। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली एक पीठ ने सरकार से 4 हफ्तों के भीतर प्रगति रिपोर्ट देने के लिए कहा है और कहा है कि 26 सितंबर को इस मामले की फिर से सुनवाई होगी। क्या है ये पूरा मामला, ये जानने के लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त सुनवाई के लिए मौजूद पत्रकार सुचित्र मोहंती से बात की।
भारत में खासकर बच्चों के साथ आजकल यौन शोषण के मामले में जो चिल्ड्रेन है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ भी सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस बहुत सारे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। उसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सुओ मोटो बेसिस पे लिया था, यानी कि आपने खुद से ये केस को टेकअप किया था। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र में ये आता है कि अगर इनको लगता है, सुप्रीम कोर्ट को की कोई जज को भी लगता है कि ये केस बहुत ही बड़ा केस है, सेंसिटिव इंपोर्टेंट केस है, तो उसको सुओ मोटो तरीके से ले सकते हैं। और ये केस एक अहम किस्सा, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुओ मोटो तरीके से सुनवाई किया और सुनवाई करने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दिया कि आप जितने सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसको सारा पोक्सो एक्ट के तहत कोर्ट बनाए, यानी जो जितने सारे डिस्ट्रिक्ट है सारे डिस्ट्रिक्ट में उनको कोर्ट बनाए। और केंद्र सरकार को ये भी आदेश दिया है कि जो भी डायरेक्शन है 4 हफ्ते के अंदर इसके बारे में रिपोर्ट फाइल करे। और ये सुनवाई आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली कोर्ट में यानी कि कोर्ट नंबर 1 में चल रही थी।
उसमें कोई डिटेल दिया कोर्ट ने कि क्यों अचानक से आज के ही दिन उठकर कोर्ट ने इस मुद्दे को अपनी अदालत में सुना है, इस पे आदेश दिया है?
जी देखिए, ये आज पहली बार नहीं था इस केस को सुनवाई करते हुए, पहले भी कोई केस इसको कोर्ट ने इसको सुनवाई कर चुके, यानी कि 2-3 हियरिंग हो चुके इसके मामले में। आज मेरे ख्याल से 4th हियरिंग होगी, आज हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। तो ये हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को 1-2 महीने पहले लगा कि ये इस तरीके से वारदातें बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, तो इसलिए सुनवाई 3 हो चुकी है, आज 4th हियरिंग था जी।
तो अभी क्या भारत में इस तरह के बच्चों के केसेस की सुनवाई करने के लिए क्या अलग तरह से विशेष अदालत नहीं थी? कोर्ट की बातों से ऐसा लगता है कि अभी इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी।
ये कह सकते हैं कि अभी तक इस तरीके के चिल्ड्रन जो सेक्सुअल ऑफेंसेस चिल्ड्रन के खिलाफ होती है, बच्चों के साथ यौन शोषण होता है, इस तरीके के केसेस की सुनवाई के लिए कोई स्पेशल कोर्ट एक्सक्लूसिवली नहीं है। तो ये अपने आपने बड़ी खबर ये है कि स्पेशल कोर्ट बनाए जाएंगे और जितने सारे केसेस है कम से कम 100 केसेस हर डिस्ट्रिक्ट में निपटारा किया जाएगा, ये अपने आपने बड़ी खबर है। मैं थोड़ा सा बता दूं पोक्सो क्या होती है। पोक्सो यही होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, यानी कि सेक्सुअल ऑफेंसेस जो चिल्ड्रन के खिलाफ होता है उसको प्रोटेक्शन के लिए करने के लिए ये कानून बना है, पोक्सो उसको बोलते हैं। पोक्सो 2012 में फॉर्मुलेट किया गया था ये इशू को एड्रेस करने के लिए, सेक्सुअल अब्यूज और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो होता है बच्चों के साथ इसको रोकने के लिए बनाया गया था। लेकिन कोर्ट को ये लगा पहले 3-4 हियरिंग जो हुई इसको प्रॉपरली एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए सुओ मोटो सुतो संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने इसको सुनवाई किया था। आज जब सुनवाई हुई, सुनवाई खत्म के बाद जब ऑर्डर पास हुआ तो सारे लॉयर इसको वेलकम किए।
सुप्रीम कोर्ट से पत्रकार सुचित्र मोहंती। और अब रुख ब्रिटेन का, जहां नए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपनी कैबिनेट में भारतीय मूल के 3 सांसदों को शामिल किया है। गुजराती परिवार से आने वाली प्रीति पटेल नई सरकार में गृहमंत्री बनाई गई हैं। आगरा में जन्मे आलोक शर्मा को इंटरनेशनल डेवलपमेंट मंत्रालय दिया गया है और ऋषि सुनक को वित्त मंत्रालय के ट्रेजरी मामलों का मंत्री बनाया गया है। वो भारत की जानी मानी आईटी कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद हैं। ब्रिटेन के संसदीय इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी सरकार में इतनी बड़ी संख्या में भारतीय मूल के सांसदों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। कितनी बड़ी है ये बात ब्रिटेन में बसे भारतीयों के लिए और ब्रिटेन के लिए, ये समझने के लिए मैंने बात की लंदन के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज में प्राध्यापक प्रोफेसर सुबीर सिन्हा से।
देखिए, अगर आप सिर्फ इस नजरिए से देखें कि ये दक्षिण एशिया या भारतीय मूल के लोग हैं तो ये तो बात सही है कि 3 जो है काफी वरिष्ठ पद उनको दिए गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बोरिस जॉनसन ने इनको इसलिए मंत्री नहीं बनाया है कि ये भारतीय मूल के हैं या ये दक्षिण एशिया के मूल के हैं। अगर आप देखिएगा कि मंत्रिमंडल का गठन कैसे हुआ है, तो जितने लोग बोरिस जॉनसन के खिलाफ कभी भी उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हो या कभी उनको अपोज किया हो उनका बिल्कुल सफाया हो गया है। तो आप पिछले कैबिनेट और आज के कैबिनेट में देखिएगा तो बहुत कम लोग बचे हैं जो कि टेरिजा मे के जमाने में मंत्री रहे हों और जो आज के जमाने में मंत्री रहे हों। एक बात तो ये है, दूसरी बात ये है कि बोरिस जॉनसन ने नो डील का वादा किया है कि अगर डील हो जाए तो वो ठीक है, मगर अगर डील नहीं होगा तो हम अक्टूबर में नो डील करके यूरोप से बाहर निकल जाएंगे। और इस पोजीशन को सपोर्ट करने वाले जो हैं कंजर्वेटिव पार्टी में, उसमें जो टैलेंटेड लोग हैं उसमें एशियाई मूल के ज्यादा लोग हैं। अब आप इन्हीं 3 को देख लीजिए, प्रीति पटेल हैं, इन्होंने नो डील को बहुत जमाने से सपोर्ट किया है, मेरे ख्याल से लोग इनको बोरिस से भी ज्यादा राइट विंग मानते हैं। मगर भारत के लिए एक इसमें इंटरेस्टिंग बात, दिलचस्प बात ये है कि प्रीति पटेल आरएसएस की और मोदी जी की बहुत ही प्रशंसक रही हैं। और जहां तक आलोक शर्मा साहब का सवाल है, वो एक काफी लो प्रोफाइल मेंबर रहे हैं कंजर्वेटिव पार्टी के, वैसे जन्म स्थान उनका आगरा रहा है, उन्होंने भी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है जो कि एक तरह से प्रो इंडिया कहा जा सके।
जी, ब्रिटेन में ट्रेडिशनल तौर पर देखा यह जाता रहा था कि जो भारतीय समुदाय है वहां का वो लेबर पार्टी के ज्यादा, उनको लेकर उनके मन में ज्यादा सिंपैथी है। भारत जब आजाद हुआ था, आजादी मिली थी, उस समय भी लेबर पार्टी की इटली की सरकार थी। लेकिन क्या अब जिस तरह से बोरिस जॉनसन कंजर्वेटिव सरकार बना रहे हैं उसमें भारतीयों को शामिल कर रहे हैं, क्या जो भारतीय वहां पर वोटर है वो भी अलग दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या उन तक पहुंचने की एक कोशिश हो सकती है? ये
आपने जो बात कही वो बहुत दिलचस्प है कि पहले भारतीय मूल के लोग जो थे वो ज्यादातर लेबर पार्टी के सपोर्टर थे और आज क्यों नहीं है। आप यही देख लीजिए कि जिस वक्त प्रीति पटेल के माँ पिताजी युगांडा से यहाँ आए होंगे और उस वक्त जो पॉलिसी थी कि जो हिंदुस्तानी मूल के लोग ईस्टर्न अफ्रीका से भगाए जा रहे हैं उनको यहाँ पे पनाह दी जाए, उसमें लेबर पार्टी का बड़ा हाथ था। हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग जो यहाँ पहले आया करते थे वो ज्यादातर श्रमिक वर्ग के हुआ करते थे, फैक्ट्रियों में काम करते थे, इसलिए उनका लेबर के प्रति रुझान होना जो है एक तरह से स्वाभाविक था। लेकिन आज जो है वो दूसरा तीसरा जनरेशन आ चुका है, भारतीय जो है अब वो नहीं है। आज के जो भारतीय है वो सब अपने रहते हैं, उनकी अपनी बिजनेसेस है, वो फाइनेंस के फील्ड में आगे बढ़ चुके हैं, बिजनेस के फील्ड में आगे बढ़ चुके हैं, तो अब वो उस वर्ग को बिलोंग नहीं करते जो पहले उस वर्ग को बिलोंग करते थे। और उनका जो रुझान कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ हुआ है वो एक तरह से वर्ग की राजनीति है, वो नेशनल ओरिजिन या राष्ट्रीय मूल की ओरिजिन कम है। जहां तक लेबर पार्टी का सवाल है, आप देख सकते हैं कि ज्यादातर भारतीय मूल के लोग और पाकिस्तानी मूल के लोग भी लेबर पार्टी को ही ज्यादा सपोर्ट करेंगे कंजर्वेटिव के पार्टी के बजाय। कंजर्वेटिव पार्टी में एक नस्लवादी स्ट्रीक जो है वो पहले से ही चली हुई है और मेरे ख्याल से उसको बहुत जल्दी भुला पाना मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं है।
लंदन से ये थे प्रोफेसर सुबीर सिन्हा। भारत के साथ बोरिस जॉनसन का एक अलग रिश्ता है। उनकी पत्नी मरीना की मां सिख थी और उनका नाता भारत के दिग्गज पत्रकार खुशवंत सिंह के परिवार से था। क्या था यह रिश्ता और कितना खास है भारत बोरिस जॉनसन के लिए, ये बताया खुशवंत सिंह के बेटे राहुल सिंह ने, जिनसे बात की बीबीसी संवाददाता जानवी मुले ने।
बोरिस जॉनसन की बीबी का नाम है मरीना और मरीना की माँ उसका नाम था दीप, दीप सिंह कहते थे, दीप कौर पहले थी, और उसने शादी की थी मेरे फादर खुशवंत सिंह के छोटे भाई के साथ, उनके बच्चे कोई नहीं हुए, तो फिर डिवोर्स हो गया। तो दीप ने फिर वो बीबीसी कॉरेस्पॉन्डेंट था दिल्ली में, सर चार्ल्स व्हीलर अंग्रेज़ था, उनकी मोहब्बत हो गई और फिर उसने उनके साथ शादी की। मगर दीप की बहन उसने भी मेरे फादर के एक भाई के साथ शादी की थी। तो मरीना जो है बोरिस जॉनसन को मिली थी जब इंग्लैंड में थी और उधर उनकी शादी हो गई थी और उनके चार बच्चे हैं। मेरे ख्याल 25 साल शादी, अब तो डिवोर्स कर रहे हैं मगर अभी तक मरीना मिसेस बोरिस जॉनसन है और वो बहुत हाई पावर्ड लॉयर है इंग्लैंड में। तो उसकी शादी की वजह से बोरिस जॉनसन बहुत बार हिंदुस्तान आया था।
आप खुद भी उनसे मिल चुके हैं, आपके इंप्रेशंस कैसे थे एज अ प्राइवेट पर्सन, नॉट एज अ जस्ट एज अ पॉलिटिशियन?
हाँ, उन्होंने बहुत सारी प्राइवेट विजिट्स हिंदुस्तान में की हैं। मैं एक बार दिल्ली में मिला था, मेरा कज़न मरीना का कज़न भी है, तो बोरिस जॉनसन उनके घर में ठहरा हुआ था गोल्फ लिंक्स में दिल्ली में। तो उसने, मेरे कज़न ने, पम्मी का नाम है, उसने एक पार्टी दी थी सिर्फ रिश्तेदार के लिए और वो सब रणथंभौर जा रहे थे और उधर बिल्कुल रिलैक्स था, उसको हिंदुस्तानी खाना बहुत पसंद है, तो सबके साथ बहुत आराम से बात कर रहा था और मुझे पता लग गया कि ये हिंदुस्तान को काफ़ी अच्छी तरह जानता है और ही गेट्स अलॉन्ग वेरी वेल विद इंडियंस। मेरे ख्याल कोई 15 रिश्तेदार थे और सबका नाम उसको पता था, बोरिस को। और मैं सोचता हूँ कि थोड़ी बहुत, मैं सोच रहा था उसके बाद, मिलने के बाद, कि थोड़ा नरेंद्र मोदी जैसे है, दोनों पोलराइजिंग फिगर्स हैं मगर बोथ उनके कैरेक्टर हैं कि इधर यू लाइक हिम और यू डिसलाइक हिम, उनके इन बिटवीन नहीं है।
तो भारत और ब्रिटेन के बीच जिस तरीके का एक हिस्टोरिक नाता है उसको उसको मद्देनज़र आपको क्या लगता है, क्योंकि शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूके के किसी प्राइम मिनिस्टर का एक पर्सनल रिश्ता हो भारत के साथ?
उसने मुझे, जब मैं मिला था दिल्ली में, ये बस एक साल ही हो गया, उसने मुझे कहा थोड़ा मखौल में कि मेरी बीबी आदि सिख है इसलिए सारे हिंदुस्तानी मुझे वोट देते हैं, थोड़ा मखौल में खाता, मगर मेरा ख्याल ये बिल्कुल रियलिटी है कि बहुत पॉपुलर है इंडियंस में और हो सकता है कि वो पाकिस्तानी के साथ भी काफ़ी पॉपुलर है। तो मुझे लगता है कि इंडो ब्रिटिश रिलेशंस उसके हाथ में काफ़ी कुछ आगे बढ़ेंगे।
बोरिस जॉनसन की भारत से करीबी के बारे में बता रहे थे दिग्गज पत्रकार खुशवंत सिंह के बेटे राहुल सिंह।
दिन भर शॉर्ट वेव 31 और 25 मीटर बैंड यानी 9460, 9510, 11795, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
और अब वक्त हो गया है आपकी चिट्ठियों का। आज आपकी चिट्ठियों के साथ हैं राजेश जोशी और सूर्यांशी पांडे।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का। और आज चिट्ठियां लेकर मेरे साथ हैं
सूर्यांशी पांडे।
सूर्यांशी पांडे, और सूर्यांशी के हाथ में मैं देख रहा हूँ कुछ पीले पीले रंग के पोस्टकार्ड्स हैं।
हाँ, और सबसे पहला पोस्टकार्ड जो है वो प्रमोद कुमार श्रीवास्तव का है, जो कैथनपुरवा सातनपुरवा से अमेठी जिला से उत्तर प्रदेश भारत से लिखते हैं।
जी हाँ, बहुत लंबा पता है। हाँ, और बहुत पुराने श्रोता है।
हाँ, और ये लिख रहे हैं कि पूरे भारत में जल संरक्षण का अभियान चल रहा है, जिसमें भारत सरकार जल संरक्षण का बहुत बड़ा अभियान चला रही है, और ऐसे में बीबीसी हिंदी इसकी कोई रिपोर्ट नहीं दे रही है और किसी तरह का कोई खबर यहाँ से नहीं आ रही है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बीबीसी से उम्मीद है कि वो इसको पूरी तरह से कवर करे।
प्रमोद जी, आपका सुझाव हमने नोट कर लिया है और अगर संभव हुआ तो इस पर हम रिपोर्ट करने की कोशिश करेंगे।
अगली चिट्ठी जो है वो लक्ष्मण दास शर्मा मंडलाना नारनौल हरियाणा से लिखते हैं। 6 जुलाई की चिट्ठी है जो अब
अच्छा,
तक 6
जुलाई के कार्यक्रम पर इन्होंने चिट्ठी लिखी होगी और अब हमारे पास पहुंची है।
हाँ, इन्होंने लिखा है कि इंडिया बोल में जो रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के मुद्दे पर जो इंडिया बोल कार्यक्रम किया था वो उन्हें बहुत पसंद आया था और ये कार्यक्रम प्रसारित हुआ था 6 जुलाई को।
जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप तो बहुत पुराने श्रोता हैं शर्मा जी और लिखते भी रहते हैं, तो कभी ऐसा भी कीजिए कि हमें फ़ोन कीजिए और हम चाहेंगे कि आप इस कार्यक्रम में हिस्सा भी लें। और कई बार फ़ोन लगना मुश्किल होता है, तो इसलिए हार मत मानिएगा। आप तो बहुत बीबीसी परिवार से बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं, इसलिए कभी शामिल होइएगा।
अब ईमेल्स की तरफ अगर नजर डालें तो सबसे पहला ईमेल महेंद्र सहारण ने भेजा है श्री गंगानगर राजस्थान से, जो लिखते हैं कि कश्मीर घाटी से कारगिल घुसपैठ की सूचना देने वाले ताशी नामग्याल की कहानी उन्हें रोचक लगी, और साथ ही साथ संदीप सोनी द्वारा होर्मुज की खाड़ी पर की गई रिपोर्ट जो दुनिया जहां में प्रस्तुत हुई वो भी ज्ञानवर्धक थी।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये मुझे लगता है कि संदीप सोनी ने जो दुनिया जहान कार्यक्रम प्रस्तुत किया उसकी तारीफ बहुत सारे और श्रोताओं ने भी की है। अगर आप आगे चिट्ठियां पढ़ेंगी तो
हाँ,
इसका जिक्र आएगा।
बिल्कुल, जंग बहादुर सिंह ने गोल पहाड़ी जमशेदपुर से लिखा है, तो वहीं आसिफ करीम मौला नगर सीतामढ़ी बिहार से लिखते हैं, और दोनों की एक ही राय है कि दुनिया जहां में सोनी साहब ने ईरान और अमेरिका की जटिल समस्या की बेहतर पड़ताल की है और बीबीसी से ऐसे ही कार्यक्रम की उम्मीद की जाती है।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और भी कोई चिट्ठियां हैं जो इसकी पक्ष में या विपक्ष में तारीफ या आलोचना?
हाँ, पक्ष में है। गौतम दत्ता किशनगंज बिहार से लिखते हैं, और यही नहीं गणेश प्रसाद हुजदार भी लिखते हैं और वो भी संदीप सोनी द्वारा प्रस्तुत किए गए दुनिया जहां की तारीफ कर रहे हैं।
अच्छा, मुझे एक सवाल गणेश प्रसाद हुजदार साहब से करना है, जो हमें लगातार चिट्ठी लिखते हैं और कई बार शिकायत भी करते हैं मेरी चिट्ठियों को आप इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन भाई, मैंने आपसे पहले भी कहा है, आप कहाँ से ये चिट्ठियाँ लिखते हैं ये तो बताइए। अपना नाम तो आप बताते हैं लेकिन पता आप गुप्त क्यों रखना चाहते हैं? हमें इतना मालूम है कि आप नेपाल के हैं, नेपाल में किस जगह से आप लिखते हैं, अगली बार ज़रूर लिखिएगा। और कई बार ऐसा होता है कि हम आपकी चिट्ठियां इस्तेमाल करते हैं, कई बार नहीं भी कर पाते, नाराज कभी मत होइए।
हाँ, और यूं ही हमें खत लिखते रहिए। आगे अगर बढ़े तो अरुण यादव लिखते हैं, ये कुशीनगर से लिखते हैं, और ये कह रहे हैं कि मैं बीबीसी हिंदी 1998 से सुनता आ रहा हूँ, लेकिन वर्तमान समय में खेल पत्रकारों द्वारा खेल समाचारों के प्रसारण का स्तर काफी नीचे गिरा है और मैं बीबीसी से उम्मीद करता हूँ कि वो इसको जल्द से जल्द दुरुस्त करें।
जब हम आत्मालोचना करते हैं, यकीन मानिए हम इन तमाम प्रश्नों पर विचार करते हैं, और टीम में हम जब फीडबैक देते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, अपनी कमज़ोरियों पर हम नज़र डालते हैं, तो इस बात का जिक्र ज़रूर होता है कि हम जो खेल समाचार हैं उनको किस तरह से उनकी क्वालिटी बढ़ाएं। और ये सूर्यांशी जी, जो आपकी टीम है उस पर भी ये एक तरह से टिप्पणी है। हाँ, तो सतर्क हो जाइए।
बिल्कुल, हम एकदम सतर्क अब हो ही जाएंगे, मुझे लगता है होना भी चाहिए।
अगर आपकी इजाजत हो तो एक मैं चिट्ठी पढ़ देता हूँ जो आसिफ करीम साहब ने लिखी है, मौलानगर सीतामढ़ी बिहार से। लिखते हैं, टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है, फतेह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। ये लिखते हैं, दुनिया जहान में सोनी साहब ने ईरान और अमेरिका की जटिल समस्या की बेहतर पड़ताल की है, बल्कि बीबीसी के सजग श्रोताओं को बदलते मध्य पूर्व की हालत से अवगत कराया है। बहुत बहुत साधुवाद। साधुवाद आपका भी आसिफ करीम साहब कि आपने इतना बेहतरीन शेर इन चार पंक्तियों में अपने पूरी जो निचोड़ था उसका उसको सामने रख दिया है। तो मुझे लगता है बाकी जो चिट्ठियां या ईमेल बच गए हैं उनको हम अगले हफ्ते ले सकते हैं, क्योंकि अब समय नहीं है। चलते चलते
पता
बता देते हैं। पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। और ईमेल लिखना चाहें तो लिखिएगा hindi.letters@bbc.co.uk पर।
नमस्कार।
और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं ज्योतिका सिंह, और आज शुरुआत करते हैं जापान ओपन से। जापान ओपन 2019 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन जारी है। स्टार शटलर पीवी सिंधु वुमेन सिंगल्स के और बी साई प्रणीत मेन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। सिंधु ने जापान की आया ओहारी को शानदार तरीके से हराया। सिंधु ने पहला गेम गंवाने के बाद जबरदस्त वापसी की। सिंधु ने 11-21, 21-10, 21-13 से जीत दर्ज की। वहीं प्रणीत ने दूसरे दौर में शानदार प्रदर्शन करते हुए गुरुवार यानी आज जापान के कांटा को सीधे सेंटों में 21-13, 21-16 से शिकस्त दी। प्रणीत ने शुरुआत से ही दमदार खेल दिखाया और विपक्षी खिलाड़ी को वापसी का मौका ना देते हुए 45 मिनट में ही मुकाबला जीत लिया। क्वार्टर फाइनल में प्रणीत का मुकाबला इंडोनेशिया के टॉमी सुगियाटो के खिलाफ होगा। इस बीच भारत के एस साईराज और चिराग शेट्टी ने भी मेंस डबल्स के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। दूसरे दौर में भारतीय जोड़ी ने चीन के हुआंग शियांग और लुई चेंग के जोड़ी को 3 सेट तक चले कड़े मैच में 15-21, 21-11, 21-19 से हराया। ये मुकाबला 53 मिनट तक चला था। और अब जाने से पहले बात कबड्डी की। दबंग दिल्ली ने प्रो कबड्डी लीग के 7वें सीजन के अपने पहले मैच में बुधवार यानी कल तेलुगु टाइटंस को बेहद रोमांचक अंदाज में 34-33 से हराकर लीग में अपनी विजयी शुरुआत की है। तेलुगु टाइटंस की ये लगातार तीसरी हार है। कल खेले गए इस मुकाबले के पहले हाफ में रोमांच का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता था कि दोनों टीमें 3 बार बराबर बराबर के स्कोर पर थीं। 20वें मिनट में आखिरी समय में भी दोनों टीमें 12-12 से बराबरी पर थीं, लेकिन नवीन कुमार ने दिल्ली को 1 अंक दिलाकर पहले हाफ की समाप्ति पर उसे 13-12 तक पहुंचा दिया। दूसरे हाफ में भी रोमांच अपनी चरम सीमा पर था, जब दिल्ली 7वें मिनट में 22-21 से, 18वें मिनट में 33-31 से और अंतिम मिनट में 34-32 से आगे थी। खेल समाचारों में आज इतना ही।
सभा समापन का वक्त हो रहा है, लेकिन चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। लीबिया के तट के नजदीक एक जहाज डूब गया है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक जहाज में सवार करीब 150 लोगों के डूबने की आशंका है। जहाज पर मौजूद 150 अन्य लोगों को स्थानीय मछुआरों ने बचा लिया है। UNHRC के एक प्रवक्ता ने बताया कि लीबिया के कोस्ट गार्ड इन बचाए गए लोगों को किनारे तक लेकर आए। यह नाव लीबिया की राजधानी त्रिपोली से करीब 150 किलोमीटर दूर शहर से निकली थी। लोकसभा में आज 3 तलाक को आपराधिक मामला बनाने वाले बिल को पास कर दिया गया। प्रस्तावित कानून के तहत 3 तलाक देने वाले व्यक्ति को अधिकतम 3 साल जेल की सजा का प्रावधान है। अफगानिस्तान में आज कई जगह हुए धमाकों में 40 से अधिक लोग मारे गए हैं। इसराइली सेना ने अपने शार्प शूटरों को आदेश दिया है कि वो गजा की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे फलस्तीनियों के पैर में गोली मारे। ये आदेश मौत की संख्या रोकने के लिए दिए गए हैं। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संसद को संबोधित करते हुए ब्रेग्जिट के बाद की एक महत्वाकांक्षी तस्वीर पेश की। उन्होंने कहा कि 2050 तक ये देश दुनिया की सबसे बेहतरीन जगहों में शुमार हो सकता है। बीबीसी समाचार
सुना रही थी गुरप्रीत सैनी। दिन भर में आज इतना ही। आज के कार्यक्रम का तकनीकी संचालन किया शाकिर आलम ने। अब सभी साथियों की ओर से मैं अपूर्व कृष्ण विदा लेता हूँ। आपसे अगली मुलाकात होगी कल सुबह भारतीय समयानुसार 6:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।